हम सब अपने सर को झुकाए दुआ करें। मेहरबान यीशु, आसमान और ज़मीन के मालिक तू ही था, है और आने वाला है। सारी तारीफ हमद और प्रस्तिश तेरी है, हम तेरे ही हाथ की कारीगरी हैं और तू ही ने हमें बनाया। मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ तेरी वफादारी, मोहब्बत, प्यार, फजल, बरकत, बख्शिशों के लिए, इन तमाम जानों के लिए, इन ख़ानदानों के लिए जो तेरे हजूर जमा है। पाक खुदावंदा, देख ये किसी इंसान के लिए नहीं बल्कि तेरी इबादत करने के लिए जमा होते हैं। मेहरबान खुदा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने इनको ज़िंदा रखा, सलामत रखा। अब जब हम तेरे कलाम को पढ़ते और समझते हैं तो हमारी सोचों और ख्यालों को दूसरी तमाम फ़िक्रों से आज़ाद कर, ताकि हम मुकम्मल तौर पर अपनी तवज्जो तेरे कलाम की तरफ मरकूज़ कर सकें। दुआ को सुन, तेरे बुजुर्ग जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं जल्दी से बताना चाहूँगा कि नेक्स्ट वीक का हमारा प्लान क्या है। मैं ये भी इस वजह से बता रहा हूँ ताकि हमें पता हो कि हमने अगले वीक में क्या करना, और बड़ा इम्पोर्टेंट भी होगा। नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट वीक के लिए आप में से जो भी, हम बैप्टिज़म की क्लासेस जो सी हैं वो जल्द शुरू करने लगे हैं, बपतिस्मे की क्लासेस। अगर आप में से कोई भी बैप्टिज़म लेना चाहता हो तो वो नेक्स्ट वीक के अंदर 5 दिन का वक्त होगा कि वो अपना नाम मोना और शैला को लिखवा सकते हैं, और हम बैप्टिज़म की क्लास जोन सी हैं वो ऑनलाइन ही करेंगे, और बैप्टिज़म की क्लास जोन सी है वो दी जाएगी, पढ़ाई जाएगी। और अगर आपको लगे कि यस, ये मेरी कॉलिंग है और ये मुझे बैप्टिज़म लेना चाहिए, अब वक्त है, तो आप ज़रूर बैप्टिज़म ले भी सकते हैं। बैप्टिज़म जोन से हैं वो हम अगले महीने में उनको थाईलैंड में ही रखेंगे और मलेशिया में भी रखेंगे। अगर कोई भी बपतिस्मा में दिलचस्पी रखता हो, बपतिस्मा लेने में उसको खुदा की तरफ से आगाही हो गई, यस दिस इज़ द टाइम, तो आप अपने नाम जोन से हैं वो ज़रूर मोना और शैला को लिखवा सकते हैं। दोबारा से अगले हफ्ते में हम सिर्फ नाम लिखेंगे, और उसके अगले हफ्ते जोन से हम बैप्टिज़म की क्लास देंगे 1 दिन के लिए, जिसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जो उनसी हैं बपतिस्मे के हवाले से बताई जाएंगी। आप में से कोई भी हो तो वो ज़रूर अपना नाम लिखवा सकता है। मुकाशवा की किताब 20 बाप 19वें बाप के अंदर हमने पढ़ा और हमने देखा काफ़ी चीज़ों को। आज हम आगे बढ़ेंगे और 19वें 20वें बाप की तरफ देखेंगे। 20वां बाप जो है वो इसके बारे में है कि जो जो मसीह के लिए, जो जिन्होंने मसीह की खातर अपनी जान दी, उनके लिए रिवॉर्ड क्या है, उनके लिए इनाम क्या है, उनके लिए क्या स्टोर किया गया। ओके, तो हमने देखा मुकाशवा की किताब 9 बाप और उसकी पहली और दूसरी आयत के अंदर, 20वें बाप के अंदर हम मुकद्दस यूहन्ना हमें बयान करते हैं कि एक और फरिश्ते को मुकद्दस यूहन्ना ने देखा। यस, सुनेगा, लिखा है, फिर मैंने एक फरिश्ते को आसमान से उतरते देखा जिसके हाथ में था घड़े की कुंजी है। ओके, अब ये एक फरिश्ता, और मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं इसके पास एक कुंजी है, इसके पास एक चाबी है। Okay? अब यही फरिश्ता जो है, हम 9 बाप उसकी पहली और दूसरी आयत के अंदर भी पढ़ते हैं इसके बारे में। जी कोई भी निकालिएगा पहली दो आयतें जो उनसे पढ़ने में मदद करें। मुकाशफा की किताब उसका 9 बाप उसकी पहली दो आयतें।
9 बाप पहली आयत। और
जी
जब पांचों फरिश्ता ने नरसिंगा पुकार तो मैंने आसमान से जमीन पर एक सितारा गिरा हुआ देखा और उसे अथाह घड़े की कुंजी दी गई। और जब उसने अथाह घड़े को खोला तो घड़े में से एक बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और घड़े के धुएं के बाइस से सूरज और हवा तारीख हो गई। आमीन।
ओके, 9 बाप उसकी पहली दो आयतों के अंदर हम देखते हैं कि पांचवें फरिश्ता ने नरसिंगा फूंका तो क्या हुआ। मुकद्दस यूहन्ना कहते हैं एक सितारा गिरा और उससे था घड़े की कुंजी दी गई। ओके, हमें पता है कि जब ये सितारे का जिक्र किया जा रहा है तो ये एक एंजल का जिक्र किया जा रहा है, एक फरिश्ते का जिक्र किया जा रहा है। हम इसके बारे में पहले बात कर चुके, लेकिन मुकद्दस यूहन्ना यहाँ पर बयान करते हैं कि उसके पास भी एक चाबी थी और उसने क्या किया, उसने अथाह घड़े को खोला था, और जब खोला था तो ज़मीन पर रहने वालों के लिए क्या आई थी, दुख और तकलीफ़ और टॉर्चर आया था और अजियत आई थी। 9वें बाप से लेकर 20वें बाप की पहली आयत तक ये अथाह घड़े का जो अबलीस है, जो जो इसके अंदर जो जो अबलीसी अबलीसी चीज़ें हैं उनको क्या किया गया, रिलीज़ किया गया। लेकिन 20वें बाप के अंदर अब हम क्या देख रहे हैं, मुकद्दस यूहन्ना को वही 9वां बाप उसकी पहली और दूसरी है जिसमें फरिश्ते को चाबी दी गई थी कि वो थागड़े को खोले, अब उसको चाबी दी गई है कि वो थागड़े को क्या करें। सब लोग जाग रहे हैं सब लोग, अब किस लिए चाबी दी गई है कि वो थागड़े को क्या करें।
बंद कर दे।
बिल्कुल दुरुस्त, बंद कर दे। सिस्टर एस्टर यूनस बिल्कुल जाग रही हैं, वेरी नाइस। अथाह घड़े की एक बड़ी कुंजी, एक 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 घड़े की कुंजी और एक बड़ी जंजीर थी। बहुत से लोग जो उनसे हैं इसके ऊपर आर्ग्यू करते हैं या क्वेश्चन करते हैं, आर्ग्यू ठीक वर्ड नहीं है, क्वेश्चन करते हैं कि ये कौन सी ऐसी चेन है, ये कौन सी ऐसी जंजीर है जिससे आप अबलीस को बांध सकते हैं या उस उथागड़े को बांध सकते हैं। तो कितने लोग ये समझते हैं कि ये लिटरल, ये हकीकी तौर पर जंजीर का जिक्र किया जा रहा है या ये अलामती तौर पर सिंबॉलिकली इसका यूज किया जा रहा है? कितनों को लगता है ये रियल है और कितनों को लगता है ये सिंबॉलिकल है?
अलामती तौर पे
ये
पास कीजिए।
अलामत दी गई है, अलामत
ओके
पास, अलामत है ये। ओके ओके ओके, ये अलामत है। ओके तो कोई भी ये बिलीव नहीं करता कि ये चेन जोन सी है या ये जो जंजीर है ये लिटरल है, ये कोई हकीकी तौर पर है। क्योंकि अगर अबलीस जोन्स है वो स्पिरिचुअल बीइंग है, अबलीस जोन्स है वो कोई रूहानी चीज़ है। रूहानी से मुराद ये नहीं है कि वो पाक रूहानी चीज़ है, बल्कि वो स्पिरिचुअल है। वो भी इंसान की शक्ल में नहीं है जिसको बांधा जाए, बल्कि वो स्पिरिचुअल है, रूहानी है। रूहानी का मतलब यही
रूहानी
नहीं
का
है।
मतलब बदरू कह सकते हैं, पर सर
बदरू,
बदरू
बदरू
जी,
बदरू कह सकते हैं, लेकिन दोबारा से वो स्पिरिचुअल बीइंग है, स्पिरिचुअल बीइंग है। ऐसा एक वजूद है जो कि जिसके अंदर रूह है। ओके, जो जो रूह रखता है, लेकिन बदरू रखता है, पाक रूह नहीं रखता। थैंक यू भाई आसिफ, मैंने अभी इसके और डेफिनेशन में इधर को आना था, लेकिन आपने और काम मेरा आसान किया। उसको जंजीर के साथ नहीं बांधा जा सकता। हाँ, उसको कलाम की जंजीर के साथ बहुत दफ़ा बांधा जा सकता है। दिस इज़ एन अश्योरेंस। आप देखेंगे कि ये पहली 6 आयतें जो सी हैं ये यकीन दहानी है, ये इस चीज़ की यकीन दहानी है कि खुदा हर एक चीज़ के ऊपर सॉवरन है, खुदा हर एक चीज़ के ऊपर इख्तियार रखता है, खुदा का इख्तियार हर एक चीज़ के ऊपर है। सुनेगा, लिखा है, उसे कुंजी दी गई और एक बड़ी जंजीर थी। उस कुंजी के साथ क्या थी? एक बड़ी जंजीर भी थी। अब हमें मालूम है कि ये जो सी जंजीर है ये अलामती है, और उसको लोहे की चेन जो सी है वो नहीं बांध सकती, लेकिन खुदा की कुदरत जो सी है वो अबलीस को क्या करती है? शिकस्त देती है, अबलीस को बांधने की कुदरत रखती है। ना सिर्फ उस वक्त में, आज भी हमारी जिंदगियों में भी अबलीस की बहुत सी चालों को, बहुत से कामों को खुदा हमसे दूर करता है, खुदा अबलीस को रोकता है। और खुदा को और अबलीस को कुछ भी करने से पहले ही नीड अ परमिशन, और हमें उसका अकाउंट मिलता है बाइबल में। किसी को याद है अय्यूब की कहानी क्या हुआ उसकी टेम्पटेशन के अंदर अबलीस को? जी भाई
अबलीस
आसिफ,
ने खुदा से इजाजत ली थी कि इसके गिर्द जो तूने बाड़ लगाई है उसको हटा।
बिल्कुल दुरुस्त, अबलीस को इजाजत लेनी पड़ी थी। जी नरगिस परवेज, आप भी कुछ कहना चाहें?
मैं भी यही कहना चाह रही थी।
तो भाई आसिफ ने जो कहना तुसी चारे सौ ताडे कोलों वर्ड ताडे ले ले, है ना? तो
सही बात है, अच्छी बात है।
क्या हुआ कि अबलीस को इजाजत लेनी पड़ती है, और फिर क्या हुआ? और दूसरी आयत के अंदर लिखा है उसने उस अजदहा यानी पुराने सांप को जो अबलीस और शैतान है पकड़कर 1000 बरस के लिए बांध दिया। दूसरी आयत के अंदर अबलीस के चार कैरेक्टरिस्टिक, चार नाम लिखे गए हैं। कोई मुझे जल्दी से वो चार नाम निकाल कर बताएगा? दूसरी आयत में से चार नाम उसके लिखे गए हैं, जल्दी से अगर कोई मेरी मदद करे कि ये चार नाम कौन से अबलीस के? किसी ने बाइबल खोली
आसिफ
है?
साहब,
जी
अजदहा, पुराना इबलीस,
जी
सांप और
मौजूदा नबी। ओके, दूसरी आयत के अंदर चार नाम जो उनसे लिखे गए हैं, पहला अजदहा, दूसरा अबलीस, पुराना सांप लिखा गया और शैतान लिखा गया। चार नाम जो उनसे, चार टाइटल अबलीस के लिए लिखे गए। ये चारों उसको, उसके कैरेक्टर को जो उनसे है वो एक्सप्लेन करते हैं। बिल्कुल उसी तरह 19वें बाब के अंदर आप देखेंगे यीशु मसीह के लिए भी कितने टाइटल यूज किए गए। यीशु मसीह के लिए मुकद्दस योहन्ना कितने टाइटल यूज करते हैं?
चार
19वें बाब से, 19वां बाब उसकी 11 आयत से लेकर 16 आयत तक हम यीशु मसीह के चार नाम हम भी देखते हैं कि यीशु मसीह को चार टाइटल दिए गए। ओके, कोई मेरी मदद करेगा क्या? कौन कौन से टाइटल थे वो 19वां बाब उसके चार
खुदा
टाइटल? जी
भी कहा
जी 19वां बाप उसकी 11 आयत से लेकर उसके 16वीं आयत तक चार टाइटल यीशु मसीह के लिए भी यूज किए गए। अगर कोई मेरी मदद करे वो चार टाइटल बताने में। हम इसके बारे में बात कर चुके हैं, बहुत इजी होना चाहिए आपके लिए। ओके, कोई पहला टाइटल बताना चाहेगा कौन सा यूज किया गया? 19वां बाप उसकी 11वीं आई।
सच्चा सच्चा और
सच्चा,
बरहक,
बिल्कुल दुरुस्त। सच्चा
आग
और
के
हक
शोले
दिलाता
की,
है।
उसके सर पर ताज,
ओके, ठीक,
पोशाक पहने हुए
बिल्कुल
का बादशाह,
दुरुस्त।
जी बादशाहों का बादशाह।
ओके, बिल्कुल दुरुस्त, बादशाहों का बादशाह। तो पहला नाम है सच्चा और बरहक कहलाता है, दूसरा नाम लिखा तो हुआ है लेकिन उस घोड़सवार के अलावा उस नाम को कोई नहीं पढ़ सकता।
खुदा का कलमा भी, ये खुदा का कलमा भी है, खुदा का जो है वो यीशु मसीह को खुदा का कलमा भी कहा गया।
जी, मैं गुजारिश करूंगा 11 आयत से लेकर 16 आयत तक यीशु मसीह के लिए कौन से चार टाइटल यूज किए गए हैं। ओके, 11 आयत से 16 आयत के अंदर पहला सिस्टर जीनियस ने जिक्र किया सच्चा और बारहक कहलाता है। दूसरा भी सिस्टर जीनियस ने जिक्र किया कि वो ऐसा उसके ऊपर एक नाम लिखा है जो उसके सिवा और कोई नहीं जानता। तीसरा नाम मुझे बताइएगा कौन सा लिखा है जी। सिस्टर बरकत परवीन ने कहा कि वो कलमा भी कहता है, यानी कि कलाम भी कहलाता है, और लिखा है
हाँ
13वीं आयत के अंदर कि उसका नाम कलामे खुदा कहलाता है। उसका नाम क्या कहलाता है? कलामे खुदा कहलाता है। और चौथा नाम जो सा है वो सिस्टर शाजिया विक्टर ने लिया, जो कि बादशाहों का बादशाह और खुदावंदों का खुदावंद। इसी तरह चार टाइटल जो से हैं वो अबलीस के लिए भी लिए गए और अबलीस को भी चार टाइटल दिए गए। कौन कौन से? अजदहा, पुराना सांप, अबलीस और शैतान। और इसको पकड़कर क्या किया गया? 1,000 साल के लिए इसको बांध दिया गया। पर्पस यहां पर क्योंकि आज हम सिर्फ इंट्रोडक्शन की तरफ और चंद आयतें कर रहे हैं, मेरा आप लोगों से एक अगला सवाल है। ओके, और इस सवाल के बाद हम मुमकिन है कि दुआ की तरफ जाएंगे अगर इसमें ज्यादा देर ना लगी। लिखा, तीसरी आयत के अंदर लिखा, और उसे अथाह गढ़े की 1,000 के लिए बांधा। दूसरी और तीसरी आयत को ज़हन में रखते हुए आपने सवाल का जवाब देना। ओके, और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया गया और उस पर मोहर कर दी गई ताकि वो 1,000 बरस के पूरे होने तक कौमों को गुमराह ना करे। इसके बाद जरूर है उसे थोड़े अरसे के लिए खोला जाए। दूसरी और तीसरी आयत को ज़हन में रखते हुए मुझे बताइएगा, क्या अबलीस को, शैतान को, अजदहे को, पुराने सांप को पनिश किया गया? क्या उसको सजा दी गई?
हाँ जी, सजा दी गई थी इसलिए तो उसको बांधा गया कि वो था गड़े में वो रहे, सजा
ओके, कोई और?
उसकी।
कोई और? क्या ये अबलीस को, शैतान को, ये चारों जिनके नाम लिखे हैं, टाइटल्स लिखे हैं, एक ही है पर उसके टाइटल चार हैं, क्या उसको सजा दी गई है? क्या उसे पनिश के लिए रोका गया है? उसे पनिशमेंट दी गई है?
बादशाह जी, उसके कामों को रोका गया है, उसकी कुवतों को।
ओके, वेरी गुड। ओके, कोई और? उसको पनिश किया गया है?
बादशाह जी, कुछ टाइम के लिए उसे बंद किया गया है, अभी उसका निजाम जो हकीकी सजा है वो उसपे मिलना बाकी है।
ओके,
लोगों को ना करे
रियल मी क्या कह रहे हो जी? की क्या तुसी?
आके वो लोगों को गुमराह ना करे।
बिल्कुल दुरुस्त। अगर आप देखेंगे तो टेक्स्ट ये बताता है ये उसकी पनिशमेंट नहीं है, अभी सिर्फ उसे बांधा गया है और उसे अथागढ़े में रखा गया है, लेकिन उसकी पनिशमेंट अभी नहीं आई। अभी तो उसको पनिशमेंट मिलनी है, अभी तो उसकी सजा आनी है। ये तो सिर्फ उसको ये रोका गया और बंद किया गया है कि वो लोगों को गुमराह ना करे, क्योंकि वो गुमराही का फर्जंद है और वो गुमराह करता है, कौमों को गुमराह ना करे। आज अगर कौमें गुमराही में है तो उसकी रीजन ये है कि आज कौमें, जो जितनी भी कौमें हैं आज, बहुत से लोग, बहुत सी नेशंस जो हैं वो गुमराह हैं। ऐसी ऐसी चीजों में गुमराह हैं जिसका हम इमेजिन भी नहीं कर सकते। ऐसे ऐसे गुनाह सरजद करते हैं जिनको सोचा भी नहीं जा सकता। मैं और आप शायद सोच भी नहीं सकेंगे जिस तरह के गुनाह कौमें करती हैं और वो गुमराही में है और उनको लगता है कि ये गुनाह नहीं है। अब मुकद्दस योहन्ना ये बताते हैं कि उस अबलीस को, उस शैतान को 1,000 साल के लिए बांधा जाएगा ताकि क्या ना कर सके वो कौमों को गुमराह ना कर सके। मैं आप सबों को ये कहूंगा, तीसरी आयत आपने अपने जहन में रखनी है। ओके, ये हमें लीड करेगी बाकी के चैप्टर के अंदर। क्या किया गया? ताकि वो गुमराह ना कर सके। आज खुदा के पास ये इख्तियार है कि खुदा जितने अरसे के लिए चाहे अबलीस को रोक सकता है, तो क्या खुदा जान के ये इजाजत देता है कि इब्लीस जो मर्जी करता रहे, मैं देखूं जरा बैठ के मजा लूं कि क्या होता है? क्या ये रीजन है खुदा का? मुझे किसी ने एक क्वेश्चन किया, देखें जब भी कोई किसी टेक्स्ट को पढ़ता है, जब भी कोई बाइबल के हिस्से को पढ़ता है, उससे रूह मुख्तलिफ तरीके से बात करता है, और ख़ास करके जो मुसलमान होते हैं उनको उनको खुदा का रूह प्रॉम्प्ट करता है ताकि वो ट्रूथ की तरफ जाएं, ताकि वो सच्चाई की तरफ आगे आ सकें। मुझसे किसी ने पूछा कि ये फिर क्या मकसद है कि खुदा ने इब्लीस को अभी खुला छोड़ा हुआ है, इब्लीस जो चाहता है वो कर सकता है, और खुदा ने फिर इब्लीस को क्यों छोड़ा ताकि वो अपने काम कर सके, धोखा दे सके? क्या रीजन है जी, कोई शेयर करना
बस
चाहिए?
बस सब, क्योंकि उन्होंने इंसान को भी आजाद मर्जी दी है, खुदा
ओके,
ने आजाद किया है तो अच्छा या बुरा कर
वेरी
सकते।
नाइस। तो मेरा क्वेश्चन है, अब्लीस जो भी काम करता है वो करता तो है, लेकिन वो किसको सर्व कर रहा है? इवेंचुअली एट द एंड ऑफ द स्टोरी, आप इमेजिन करें फिल्म चल रही है और इस फिल्म के अंदर अब्लीस भी अपना काम कर रहा है, लेकिन वो असल में काम किसके लिए कर रहा है? शायद ना समझते और चाहते हुए भी वो काम कर किसके लिए रहा है?
एक्चुअली वो खुदा के साथ जंग
के
कर रहा है, खुदा के मुकाबले में वो करना चाहता है कि
लिए
मैं ये कर सकता हूँ और लोग मेरी सुनते हैं, बेशक तेरी सुनते हैं तो मेरी भी सुनते हैं। वो खुदा के और शैतान के दरमियान एक जंग आप कह सकते हैं।
जी, कोई और?
वो खुदा की मुनादी करता है,
इसके
उसकी वजह से
भाई
खुदा के नाम को इज्जत और जलाल मिलता है।
आसिफ दोबारा से बोलना जरा प्लीज।
शैतान की वजह से ही बाद में लोग समझते हैं कि खुदा की हकीकत क्या है, तो अगर शैतान ना हो तो ये लोग भी इतनी कोशिश ना करें फिर खुदा को जानने के लिए।
आप देखें कि खुदा अबलीस जो है वो ना चाहते हुए भी, विदाउट नोइंग, शायद वो अपनी तरफ से तो अपना काम कर रहा है, लेकिन इवेंचुअली हम सब अबलीस और हर एक जानदार जो इस जमीन पर मौजूद है, वो पता है किसको सर्व कर रहा है? वो खुदा के उस बड़े मंसूबे को सर्व कर रहा है, उस खुदा के बड़े निजात के प्लान को सर्व कर रहा है, विदाउट नोइंग कि वो क्या कर रहा है। यीशु मसीह ने सलीब पर पता है क्या पुकार कर कहा? यीशु मसीह ने कहा, ए बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं। ये समझते हैं कि ये ठीक कर रहे हैं, लेकिन ये किसी ना किसी तरह तेरे प्लान को सपोर्ट कर रहे हैं, तेरा प्लान जो निजात का है, तेरा प्लान जो अनसर रास्ती का है, तेरी जजमेंट है, ये उसी को सर्व कर रहे हैं। आज इब्लीस को अगर बांधा गया है, या जब इब्लीस जो सा वो इस दुनिया में ऑपरेट करता है, तो वो इवेंचुअली जो सा खुदा का काम कर रहा है। किस तरह से? क्योंकि लोग जब उसका चुनाव करते हैं तो खुदा जो सा लोगों को ये मौका मिलता है कि वो खुदा को ना कर सकें और इब्लीस को हाँ कर सकें, तो वो इवेंचुअली किसका काम कर रहे हैं? खुदा का काम कर रहे हैं। इब्लीस इवेंचुअली हकीकत में किसका काम कर रहा है? खुदा का काम कर रहा है। और हम इसके ऊपर मजीद देखेंगे कि ये किस तरह से खुदा का काम करता है। आज आप अय्यूब को देखेंगे, आज आप अय्यूब की स्टोरी पढ़ते हैं, अबलीस ने उसको आजमाया तो जरूर, और खुदा ने कहा तूने इसकी जान नहीं लेनी, और उसको आजमाइश आई, लेकिन उस आजमाइश से किसका नाम ग्लोरीफाई करता है? आज किसके नाम को इज्जत और जलाल मिलता है? खुदा के ही नाम को इज्जत और जलाल मिलता है। तो इवेंचुअली जो है, इवेंचुअली बड़ी पिक्चर में अगर हम देखेंगे, हमें ऐसा लगता है कि अबलीस ऑपरेट कर रहा है, लेकिन वो ऑपरेट अपने लिए नहीं कर रहा, उसको ये शायद मालूम भी नहीं है कि वो किसके लिए ऑपरेट कर रहा है, लेकिन गॉड नोज अबलीस भी खुदा की अथॉरिटी और उसकी सॉवरेंटी के अंदर है। अबलीस कोई खुदा का राइवल नहीं है कि ओके खुदा के साथ की कोई पावर है और अबलीस के अंदर, अच्छा मैं खुदा को देखूंगा। खुदा का कोई राइवल नहीं है, खुदा का कोई राइवल नहीं है। कौन खुदा का मुकाबला कर सकता है? कोई भी नहीं। ये सी द पॉइंट, कोई भी खुदा का राइवल नहीं है। आज इब्लीस भी खुदा की पावर और अथॉरिटी के अंदर है, लेकिन जिस तरह सिस्टर एस्टर ने कहा, खुदा हमें हमारी विल को, हमारी पावर को, हमारी फ्रीडम को एक्सरसाइज करने का हमें फजल और अपनी ग्रेस के साथ हमें बताता है। जिस तरह हम अपने बच्चों को कहते हैं ना, ओके बेटा अब आप 18 साल के हो चुके हो, अब आपने यूनिवर्सिटी में जाना है, नाउ यू हैव टू चूज वॉट यू वॉन्ट टू डू बिकॉज यू आर बॉर्न विद अ फ्री विल। शैतान को पकड़कर 1000 बरस के लिए बांधा और उसे अथाह घड़े में डालकर बंद कर दिया और उस पर मोहर कर दी, वो 1000 बरस पूरे होने तक कौमों को फिर गुमराह ना करेगा। वो सिर्फ गुमराह कर सकता, वो झूठ बोल सकता, गुमराह करेगा, इसके बाद जरूर है थोड़े अरसे के लिए उसे खोला जाए। हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे कि क्यों उसे थोड़े अरसे के बाद खोलने की जरूरत है, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ ये अबलीज को दोबारा खोलने का। मेरा आप सब उसे लास्ट क्वेश्चन, और फिर हम दुआ की तरफ बढ़ेंगे। आज जितनी भी सिंफुल एक्ट होते हैं, आज जितने भी लोग गुनाह करते हैं, उसका इल्जाम किसके ऊपर जाता है? जितने भी सिंफुल, जितने भी, जी मैं दोबारा से अपना क्वेश्चन रिपीट करता, जितने भी आज लोग इस जमीन पर, 7 बिलियन की पॉपुलेशन है, और जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस दुनिया पर, इस प्लैनेट अर्थ के ऊपर, जब वो कोई गुनाह करते हैं, जब भी कोई गलती करते हैं, या कोई किसी को मार देता है, या कुछ भी करता है, तो इल्जाम किसके ऊपर है?
शैतान के ऊपर, शैतान के
शैतान
ऊपर आ गया। शैतान ने सानू कहा तो सिया कर दिता नहीं, तो सानू शैतान आ गए थे साडे उत्ते। जी
बिल्कुल दोस्त। प्रवीण नौशी, आप भी कुछ कहना चाह रही हैं?
बस जी, मैं भी यही कह रही थी, शैतान के ऊपर जाता था।
शैतान के ऊपर इल्जाम जाता है, बिल्कुल दुरुस्त। आप सबों की अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल क्लियर है। ओके, अब हम कल इसके ऊपर फाइंड आउट करेंगे, और मैं चाहूंगा कि आप में से सब लोग, बाकी अगर आप किसी को जानते हैं उसको भी कल के लिए जरूर इनवाइट कीजिएगा। कल हम इस चीज के ऊपर गौर करेंगे, क्यों यीशु मसीह ने अबलीस को 1000 साल के लिए बांधा और फिर खोल दिया। हाँ, बांधा और फिर खोल दिया, है ना? नंबर एक चीज तो आप अभी जेहन में रखिएगा, बाकी हम इसकी डिटेल में कल जाएंगे, कि यीशु मसीह के पास अख्तियार है कब उसको बांधना चाहे, कब खोलना चाहे। ऐसी कोई तुमर खान नहीं है कि जिसको यीशु मसीह अपने कंट्रोल में नहीं कर सकते, है ना? कोई ऐसी चीज है जो फड़ी नहीं सी जा रही, अब उसको बांधा गया है, यस ओहो हो, अब इसको खोल दो। यीशु मसीह के पास इख्तियार है। अगर कोई ऐसा तुम्मन खान हो, ऐसी अबलीसी कोई, ऐसा कोई तुम्मन खान हो जिसे बांधा नहीं जा सकता, तो फिर, या जिसे पकड़ना बड़ा मुश्किल था, तो फिर इसे खोलने की क्या जरूरत थी? यीशु मसीह के लिए कोई कोई भी काम मुश्किल नहीं है। जाने से पहले हम एक हवाला पढ़ेंगे, मेरे सर निकालेगा। पहला पत्रस उसका 5 बाब उसकी 8वीं आयत, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 8वीं आयत, पहला पत्रस 5 बाब उसकी 8वीं आयत। मैं पढ़ता हूँ, आप लोग सुनेगा। लिखा है, तुम मुकदस यूहन्ना कहते हैं, उसे 1000 साल के लिए बांधा गया ताकि वो कौमों को गुमराह ना करे। अब पहला पत्रस उसके 5 बाब उसके 8वीं आयत के अंदर क्या लिखा है? तुम होशियार और बेदार, बेदार का मतलब है सोते ना रहो, जागो, तुम होशियार और बेदार रहो। तुम्हारा मुखालिफ अबलीस गरजने वाले शेर बब्बर की तरह ढूंढता फिरता है किसको फाड़ खाए। क्या करता है वो? ढूंढता है कि किसको फाड़ खाए। मुकदस यूहन्ना बयान करते हैं कि उसे 1 साल के लिए, 1000 साल के लिए बांध दिया गया। अब वो किसी को ढूंढ कर फाड़ खा नहीं सकता, अब वो किसी को धोखा नहीं दे सकता, वो किसी को डिसीव नहीं कर सकता, वो किसी के साथ झूठ नहीं बोल सकता। कितने साल के लिए? 1000 साल के लिए। नो मोर गुमराही, नो मोर गुमराही, कोई गुमराही और नहीं है। लेकिन 1000 साल के बाद दोबारा से उसे खोला जाएगा। वॉट इज द पॉइंट कि उसे दोबारा से खोला जाए? कल हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। हम सब अपने सर को झुकाएं और आज हम इस चीज़ के ऊपर रिफ्लेक्ट करें और गौर करें कि खुदा ने, खुदा हर एक चीज के ऊपर सवरन है। बहुत दफा हम ये कहते हैं जरूर है, खुदा तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है, लेकिन कई दफा वो सिर्फ अल्फाज होते हैं। वो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। वो इबलीस के सारी चालों को बांधने, उनको नेस्त और नाबूद करने की भी कुदरत रखता है। आज खुदा का कोई राइवल नहीं है, खुदा का कोई राइवल नहीं। मुकाशवा की किताब में बताती है कि देर इज नो, कोई मुकाबला ही नहीं है। खुदा की राइवली किसके साथ है? खुदा का मुकाबला कौन कर सकता है? ये तो इबलीस को एक चांस दिया गया, एक मौका इबलीस को ये अलाउ किया गया है कि वो खुदा की विल को, खुदा की मर्जी को, जो खुदा चाहता है उसको पूरा करें। क्या खुदा इबलीस इबलीसी कामों से खुश होता है? नहीं। क्या इबलीस इबलीसी कामों से खुश होता है? यस। बट इवेंचुअली वो क्या कर रहा है? वो खुदा ही के पर्पस को पूरा कर रहा है। मैंने स्टोरी पहले भी शेयर किया लेकिन आज फिर से शेयर करना चाहूँगा। एक औरत थी और उसको बहुत ज़्यादा परेशानी थी, उसके पास फूड नहीं था और परेशान थी कि मेरा फूड कहाँ से आएगा, मैं कैसे खाऊंगी, मैं क्या करूँगी, मेरे पास कुछ नहीं है खाने पीने के लिए। और उसने एक रेडियो स्टेशन पर कॉल की। अगर आप जब आप आएंगे नॉर्थ अमेरिका में और यूएसए में, ये मशक आम है, आम तौर पर लोग जो है वो रेडियो स्टेशन पे कॉल करते हैं और उधर मुख्तलिफ चीज़ें जो हैं शेयर करते हैं। इसी तरह उस औरत ने भी कॉल की और उसने कॉल करके कहा कि मैं बड़ी परेशान हूँ और मैं सिर्फ शेयर करना चाहती थी कि मैं परेशान हूँ और मेरे पास फूड नहीं है, मेरे पास खाने को कुछ नहीं है और मैं हूँ भी अकेली कि मैं किसी को बता भी नहीं सकती, तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को फ़ोन कर कर ज़रूर बताती हूँ। तो मुझे पता है कि खुदा जो उनसे मेरी ज़रूरत को पूरा करेगा, लेकिन मैं सिर्फ इस बोझ को किसी के साथ शेयर करना चाहती थी। अब जो वो रेडियो स्टेशन था उसका जो मालिक था वो खुदा को नहीं मानता था, वो एथियस था। उसने अपने ड्राइवर को फ़ोन, वो फ़ोन कॉल उसने भी सुनी क्योंकि वो रेडियो पर थी, और उसने अपने एक मुलाजिम को कहा कि इस औरत को कॉल करके इसके घर का एड्रेस लो और इसके घर जाओ, और जब जाओगे तो ग्रॉसरी के बहुत से बैग जो हैं वो अपने साथ लेकर जाना। ये औरत कहती है कि जी खुदा ने भेजा, खुदा ने भेजा, देखने अनाज की है, मैं तो खुदा नु मानता नहीं, मैं नहीं खुदा को मानता, मुझे पता कि मुझे खुदा कह भी नहीं रहा, लेकिन देखते हैं होता क्या, देखते हैं ना कि ये औरत को कौन दे रहा है। उन्हें अपने ड्राइवर ने कहा गड्डी दे बेच राशन भर, उसने गाड़ी के अंदर राशन भरा, औरत के घर की बेल बजाई, औरत के दरवाजा, औरत बाहर निकली, औरत को कहा कि ये आपके लिए सामान है, औरत ने उठा उठा कर बैग अपने घर के अंदर रखे, बहुत ज़्यादा बैग था, बहुत ज़्यादा फूड था। उस औरत ने उस आदमी का शुक्रिया किया और अपना दरवाज़ा बंद करने लगी तो उस आदमी ने कहा कि आपने जानना नहीं है कि ये किसने भेजा है, आपको नहीं जानना कि ये फूड किसने भेजा है। और उस औरत ने कहा जिसने भी भेजा हो, मुझे पता है कि खुदा जो है वो इब्लीस को भी मेरी ज़रूरत पूरा करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है, खुदा जो है वो किसी भी तरीके से मेरी ज़रूरत को पूरा कर सकता है। वो जो शख्स था
हालेलुया।
उसका उसका मकसद जो है वो तो ये बताना था कि ये इब्लीस की तरफ से है, मैं तो खुदा को मानता नहीं हूँ, दस हाँ फूड कितों आया, तू के नहीं खुदा, खुदा थे मैं देता ही, फिर तू कहती है मुझे खुदा देगा तो देन मैं डे आवा, हूं दस हाँ खुदा है कि मैं हाँ। तो वो औरत कहती है मुझे पता है कि खुदा किसी को भी इस्तेमाल कर लेगा मेरी ज़रूरत को पूरा करने के लिए, वो सॉवरन है, वो हर एक चीज़ के ऊपर इख्तियार रखता है, हर एक चीज़ उसके कंट्रोल में है, अबलीस भी उसके कंट्रोल में। और मुकदस होना कहते हैं उसे 1,000 साल के लिए बांधा गया ताकि वो किसी को फाड़ ना खाए, ताकि वो गुमराह ना करे। आज अबलीस की हर एक चाल, हर एक उसकी स्कीम खुदा के कंट्रोल में है, और वो चाहता है कि हम उस कंट्रोल को उसके मुंह की बातों से काउंटर करें। यीशु मसीह को जब इबलीस की तरफ से आजमाया गया तो यीशु मसीह ने तीनों दफा किसका इस्तेमाल किया, स्क्रिप्चर का इस्तेमाल किया, बाइबल के हवाला जात देकर उसको कहा लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, लिखा है कि इंसान सिर्फ रोटी ही से ना जीता रहे, तीनों मरतबा लिखा है कि तू खुदावंद अपने खुदा ही को सजदा करना, तीनों मरतबा खुदा ने क्या, यीशु मसीह ने किसका यूज किया, लिखा है। हाउ डू वी इनकाउंटर सेटन टुडे, आज हम इब्लीस की स्कीमों को किस तरह से इनकाउंटर करते हैं, कलाम की रोशनी में? क्या आज हमारे घर में इतना कलाम पढ़ा जाता है कि इब्लीस जो है वो यहां पर आए ना, इब्लीस को पता भी ना हो कि यहां पर कोई कलाम पढ़ा जाता है और कोई यहां पर रहता भी है? हाउ डू वी इनकाउंटर सेटन, आज हम इब्लीस को किस तरह से इनकाउंटर करते हैं, उसके साथ उसकी कंपनी में ज्वाइन होकर या कलाम को पढ़कर या यीशु मसीह को एक्सरसाइज कर कर या मसीही अकीदे को अपनी लाइफ, अपने घरों, अपने बच्चों, अपनी बीवी के जिंदगियों में एक्सरसाइज होते हुए देखते हुए, हाउ डू वी डू दैट, हम कैसे करते हैं? हम सब अपने सर को झुकाएं, दुआ करें। मेहरबान यीशु, तू ही था, तू ही है, तू ही आने वाला है, हर एक चीज़, हर एक चीज़ तेरे इख्तियार में है। तू हर एक चीज के ऊपर सवरन है। ए मेहरबान यीशु, तू हमारे हालात, हमारी सिचुएशंस, हमारी आजमाइशों, हमारी टेम्पटेशंस, हमारी ट्रायल्स, हमारी हार्डशिप्स, हमारी ट्रबल्स, हर एक चीज से वाकफ है, और तू हर एक चीज के ऊपर सवरन है, हर एक चीज के ऊपर तेरा अख्तियार है। हम जानते हैं कि ये पल भर की मुसीबत जो सी है, वो उस जलाल जो हमें जाहिर होने वाला है उससे, उस जलाल से बहुत छोटी है। हम तेरे हजूर से ताजगी की दुआ करते हैं। मैं तेरे हजूर दुआ करता हूँ मेहरबान यीशु, तू हर एक शख्स की सिचुएशन, उसके सरकमस्टांसेस के में अपना हाथ बढ़ा और उनकी सिचुएशंस को चेंज कर। अपना हाथ बढ़ाए मेहरबान खुदावंदा, तू हर एक शख्स के दिल की ख्वाहिश और मुराद को जानता है पाक यहोवा यरी। तो उनके दिल की मुराद को अपनी पाक और कामल मर्जी के मुताबिक पूरा करे मेहरबान खुदा, तो सब कुछ करने की कुदरत रखता है। हमें मालूम है कि हर एक चीज़ तेरे इख्तियार में। आज तेरे लोगों का इस मुल्क से अगले मुल्क जाना भी तेरे हाथ में है। आज वो कुंजी भी तेरे पास है जिससे तू अपने लोगों को आगे लेकर जा सकता है। ऐ मेहरबान खुदावंदा, अपने लोगों की सारी मुसीबत के ऊपर अपना अपना रहम फरमा, इस सारी मुसीबत के ऊपर अपनी नज़र का रहे पाक यहोवा यरी, और अपने लोगों को बहाल कर ताकि अगले मुल्कों में जा सकें और तेरी तेरे नाम को हमेशा धन्यवाद कर सकें और तेरा शुक्र अदा कर सकें। ऐ पाक खुदावंदा, देख हर एक कंट्रोल तेरे पास है, उन लोगों का भी कंट्रोल तेरे पास है जो सुकताई डीसी की बंद दीवारों में है, उसकी भी कुंजी तेरे पास है। ऐ पाक यहोवा यरी, अपने लोगों को रिहा कर, अपने लोगों को अपनी फैमिलीज के साथ लेकर आ वापस, नई गवाहियां इन लोगों की जिंदगी के अंदर ठहरा है पाक यहोवा। ये समझे और जाने कि तू सवरन है, तेरे पास हर एक चीज है, तू 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 हर एक चीज को कंट्रोल करता है। आज हमारी मुसीबत, हमारे आंसू, हमारी दर्द, हमारी तकलीफ, हमारी मुसीबत तुझसे छिपी नहीं है, तो इससे बाखूबी वाकफ है। लेकिन तो इस सब मुसीबत, तंगी, परेशानी में तो इन तमाम लोगों को और ज्यादा स्ट्रांग करता है, हम इसके लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, तो इनको मजबूत करता है। तूने दाऊद को जाती जूलियत से मरवाने से लड़वाने से पहले तूने उसे और बहुत से जंगली जानवरों को मरवाया, उसको मजबूत किया ताकि वो बड़ी मुसीबत का सामना कर सके। पाक की हवा, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ इस सारे सैंक्टिफिकेशन के प्रोसेस के अंदर जो तू अपने लोगों के साथ कर रहा है। इन लोगों को बहाल कर, अपनी मर्जी और अपने कामों के लिए इस्तेमाल कर। पाक की हवा, हम जानते हैं कि तूने तूने हमारे लिए बहाली के प्लान को रख छोड़ा है। तू जानता है कि तूने हमें कब बहाल करना है, तूने कब इन लोगों को अगले मुल्कों में लेकर जाना है, तूने कब यहाँ पर उन तमाम माँ बाप की को तसल्ली देनी है जो अपने बच्चों की एजुकेशन, बच्चों की शादियों, बच्चों के फ्यूचर के हवाले से परेशान है। तो अपना हाथ बढ़ा और अपने लोगों के ऊपर रहम फरमाए पाक यहोवा। मेहरबान खुदा, देख जैसा कि कल जुम्मा है और हम रोज़ा रखते हैं, तो हमें फजल अता फरमा कि हम IDC के लोगों के लिए रोज़ा रखें। तो हमारे तो हम पर रहम फरमा कि हम कल तमाम लोगों की रिहाई के लिए रोज़ा रखें, तमाम वो लोग जो जो नाउमीद है, जिनके पास कोई स्पॉन्सर कुछ नहीं है पाक खुदा, इनकी उम्मीद तसल्ली तू है। देख हम तुझे देखते हैं और तुझे पुकारते हैं। अपना हाथ बढ़ा और अपने लोगों के लिए रिहाई के इंतजाम को कर। हमें यूं ही ईमान की मजबूती अता फरमा, हमें यूं ही अपने कलाम की पहचान में और ज़्यादा बढ़ा ताकि हम हकीकी तौर पर समझ सकें, जान सकें कि तेरा कलाम हमसे क्या कहता है। हमारी जिंदगियों में तेरा नाम हमेशा कुदरत और जलाल पाए। दुआ को सुन, तेरे बुजुर्ग और जलाली नाम से मांगते हैं, आमीन। जिसने हमें सिखाया, आए हमारे बाप